તારીખ 27/10/1995 શ્રી પરમાગમસાર બોલ નંબર 637 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 634
સમયસાર કે પરિશિષ્ટ મેં આચાર્ય ભગવાનને પ્રશ્નોત્તર રૂપ મેં ઇસ વિષય કા પ્રતિપાદન કિયા હૈ ઉસ પર ગુરુદેવ શ્રી કે વ્યાખ્યાન મેં સે યે વચનામૃત લિયે હૈ પ્રશ્ન ઉઠાયા હૈ વો મૂળ પ્રશ્ન હૈ સમયસાર મેં ભી પરિશિષ્ટ મેં ભી યે પ્રશ્ન હૈ तीनों में जो प्रश्न है 637, 38, 39 वो तीनों प्रश्न वहाँ है और उत्तर में थोड़ा विस्तार या स्पष्टीकरण विशेष रूप से किया है गुरुदेव ने कि आत्मा अनंत स्वभाववान होने पर भी उसे ज्ञान मात्रपणे क्यों कहने में आता है। ज्ञान मात्र कहने से तो दूसरे अन्य धर्मों का निषेध समझ में आता है। क्या प्रश्न उठाया है कि आत्मा में ज्ञान जैसा एक स्वभाव है वैसे दूसरा भी स्वभाव है, ज्ञान दर्शन चारित्र प्रभुत्व विभुत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनंत गुणों का स्वभाव है। तो अनंत स्वभाव मैंने अनंत गुण स्वभाव होने पर भी ज्ञान मात्रपणे क्यों कहने में आया कि आत्मा ज्ञान मात्र है ऐसा समयसार में क्यों कहा। और मात्र ज्ञान कहने से तो दूसरे गुण का निषेध समझ में आ जाए तो ऐसी भूल हो जाए तो। और कोई भी सिद्धांत प्रतिपादन करो भूल होने की तो संभावना है। शास्त्र के सिर्फ शास्त्र के सिवा सत्संग भी चाहिए इसका यही कारण है कि कोई भी सिद्धांत शास्त्र पढ़ो समझ में भूल होने की संभावना है और सत्संग में इसकी चर्चा होती है तो भूल निकल जाती है। तो यहाँ ये शंका उठाई है कि ज्ञान मात्र कहने से अन्य गुण का निषेध समझ में आता है इसका क्या करें। तो उसका उत्तर देते हैं कि लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्षणरूप आत्मा का निर्णय करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है या हेतुपूर्वक विधान है। तो 12 अंग में एक हेतुवाद भी हेतुवाद नाम का अंग है। हेतुवाद ज्ञान ज्ञान प्रवाद ऐसे अनेक गुणों का अलग अलग लिया है। यहाँ हेतु से कथन है। क्या हेतु है कि लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि लक्षण की प्रसिद्धि है। जो ज्ञान लक्षण है वो तो प्रसिद्ध है प्रगट है अनुभव गोचर है और साकार रूप है दर्शन की तरह निराकार नहीं है। ऐसे ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य रूप आत्मा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय माने पहचान करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। कहने वाले आचार्य भगवान को ये बात का ख्याल है कि आत्मा में और भी दूसरे दूसरे अनंत गुण है। नहीं ख्याल है तो बात नहीं है, फिर भी दूसरा इलाज नहीं है समझाने में दूसरा कोई रास्ता नहीं है उपाय नहीं है। इसलिए अच्छी तरह समझ सके ऐसा देख करके और अपना अनुभव को लेकर के वो प्रतिपादन करते हैं, वो अपना अनुभव को लेकर के प्रतिपादन करते हैं। साकार मैंने क्या कि जिसका स्वरूप चौकस रूप से ज्ञान में ले सके उसको कहते हैं साकार। जैसे किसी के आकृति का पता चले तो उसका बॉर्डर लाइन आ गया तो वो ऐसा है ऐसा पता चलता है। ऐसा ज्ञान में भी ज्ञान साकार होने से ज्ञान का चौकस स्वरूप, आत्मा का चौकस स्वरूप, खास स्वरूप, स्पेसिफिक स्वरूप ज्ञान में आ जाता है। साकार कहो या स्पेसिफिक कहो, खास स्वरूप कहो, प्रसंग निराकार, इसलिए सदमस्त को पकड़ में आता नहीं है। ज्ञान कैसा है ऐसा बराबर समझ में आ सकता है। साकार है, अनुभव गोचर भी है और प्रकट भी है। इसलिए आत्मा को पहचानने के लिए सुविधा है उसमें, यानी अच्छी तरह समझ सके ऐसी बात में, यहाँ से पहचान सके, जो यहाँ से बन सकता है दूसरे कोई प्रकार से बन सकता नहीं है। लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्षरूप आत्मा का निर्णय कराने के लिए वो हेतु है, या निर्णय कराने का हेतु है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण है वो कहने वाले को बराबर ज्ञान में है ये बात कि आत्मा में अनंत गुण है, परंतु उसमें ज्ञान मुख्य है या विशेष गुण है। ज्ञान प्रधान गुण वाला आत्मा है। आत्मा अनंत गुणात्मक होने पर भी ज्ञान प्रधान गुण वाला आत्मा है। वो बात अनुभव प्रकाश में भी लिया है कि अनंत गुण होने पर भी ज्ञान की प्रधानता है। क्यों? कि पहचान भी वहाँ से होती है और अनुभूति भी ज्ञान में होती है, अनुभूति भी ज्ञान में होती है, इसलिए ज्ञान की प्रधानता है। आत्मा में अनंत गुण है, उसमें ज्ञान मुख्य है कि विशेष गुण है। तीनों काल आत्मा का लक्षण ज्ञान है। ये क्यों कहा कि कोई काल में किसी एक जीव को दूसरे प्रकार से पहचान हुए, दूसरा लक्षण से पहचान हुए ऐसा बन सकता नहीं है। कोई काल में, कोई क्षेत्र में, कोई जीव को दूसरे प्रकार से आत्मा की पहचान नहीं हो सकती। वो समझाने के लिए कहा कि तीनों काल आत्मा का लक्षण ज्ञान है जो अन्य द्रव्य में नहीं है। दूसरे कोई द्रव्य में ज्ञान लक्षण नहीं है, सब जड़ है, पांचों पांच जड़ है। तीनों काल आत्मा का लक्षण ज्ञान है ऐसा कह करके पहचान करने के विषय में दूसरे प्रकार का मिथ्या प्रयत्न, अन्यथा प्रयत्न कोई नहीं करे, वो बात उसमें लेना है। कोई अन्यथा मिथ्या प्रयत्न करने से तो कोई लाभ, पहचान तो होने वाली है ही नहीं। तो दूसरे दूसरे प्रकार का प्रयत्न करने वाले का परिश्रम को बचाया है, उसकी समय शक्ति को व्यर्थ खर्च हो जाए उसको बताया है। ये बात सभी अध्यात्म शास्त्र में प्रसिद्ध है, फिर भी हमारे यहाँ शास्त्र का अध्ययन करने वाले भूलते हैं इस विषय में, और पहचान करने के लिए दूसरा तौर तरीका अजमायश कर लेते हैं, फिर भी कर लेते हैं, करते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान ये भूल करते हैं। अपने समय सार से लेकर के सभी अध्यात्म शास्त्र में ज्ञान की मुख्यता से ही बात चली है, और ज्ञान से ही पहचाना जाता है वो बात भी चली है। वस्तु को कहाँ खोजना, वस्तु की अंतर खोज हुए बिना तो वस्तु की प्राप्ति होने वाली है ही नहीं, भाव भाषण आने वाला है ही नहीं, तो फिर कहाँ खोजना वस्तु को, तो ज्ञान के प्रकाश में खोजो ना। आपको ऐसा नहीं कहते हैं कि राग के अंधेरे में खोजो, अंधेरे में वस्तु को खोजना होवे तो कठिनाई होवे, मुश्किली होवे, लेकिन प्रकाश में वस्तु को खोजना है उसमें कौन सी तकलीफ है, कि कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तीनों का आत्मा का लक्षण ज्ञान है, कोई अस्तित्व लेते हैं दूसरे दूसरे कोई विद्वान लेते हैं, वो अस्तित्व लेते हैं कि हम तो आत्मा के अस्तित्व को पकड़ते हैं, अस्तित्व को पकड़ते हैं लेकिन किस लक्षण से। अस्तित्व तो छह द्रव्य का सामान्य गुण है, और दूसरे अस्तित्व में हमारा अस्तित्व का अध्यास तो चल रहा है। देहादि संयोग में मेरापना रूप अस्तित्व का तो हम अनुभव कर ही रहे हैं, तो अस्तित्व की भूल तो चालू है, वो कहाँ से निकलेगी, तो भिन्न अस्तित्व कैसे पड़ेगा। ज्ञान लक्षण बिना भिन्न अस्तित्व का पता लगेगा
नहीं।
हाँ, विधि की भूल है, विधि की भूल है, गृह विख्यात हो गया। ये तो तत्व ज्ञान के अभ्यास में ये तो जुम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जरा भी प्रयोजनभूत विषय में गलती करे कि गृहित मिथ्यात्म में चला जाएगा। इसका मतलब क्या, कि जीव पूरा आत्मार्थी हो, पूरा मोक्षार्थी हो और प्रयास करे तो वो भूल करे नहीं। आत्मार्थिता और मोक्षार्थीपना बराबर नहीं हो और तत्वज्ञान का अभ्यास करे, कहीं न कहीं चुप करके गृहित मिथ्यात्म में चले जाएगा। जो तत्वज्ञान का अभ्यास मिथ्यात्म को गालने का साधन है, वही उनको मिथ्यात्म बढ़ जाने का साधन हुआ, और मिथ्यात्म गालने का कहाँ अवकाश रहा, कहाँ परिस्थिति रही, कि कोई फिर तो मिथ्यात्म गलने की परिस्थिति भी नहीं रहती। गुरु बिना ऐसा रास्ता कौन बताए, और शास्त्र भी निकले हैं, वो तो गुरुमुख से तो निकले हैं, गुरु गौतम से मुख कुंड डरी है, वीर हिमाचल से तो निकली, लेकिन वो तो शब्द रूप थी, शब्द ब्रह्म रूप थी, बोलने का शब्द था, अंग पूर्व रूप तो व्यवस्थित रूप से, अंग पूर्व रूप मैंने वही वाणी को व्यवस्थित किया। किसने किया, गंधर्व देव जो गुरु होते हैं वो आचार्य के पद पर है, गंधर्व देव है वो आचार्य के पद पर है, और आचार्य में भी आचार्य शिरोमणि है, आचार्य तो बहुत होते हैं, एक संप्रदाय में एक संघ में आचार्य तो बहुत होते हैं, लेकिन जो गणधर होते हैं वो सभी आचार्यों में श्रेष्ठ आचार्य है, क्योंकि अंतर्मुर्त में 12 अंक की रचना करने का सामर्थ्य गणधर के अलावा दूसरे में नहीं होता। वो व्यवस्थित करते हैं भगवान की वाणी को, उसी को शास्त्र कहने में आया है। हाँ, वो व्यवस्थित समझाया, बहुत व्यवस्थित, एकदम सिस्टमेटिक पद्धति है जैन दर्शन के शास्त्रों के, फिर भी उसको समझने के लिए गुरु चाहिए, वो तो है, अपने आप समझ में नहीं आएगा। ये तो स्कूल की किताबें भी मिलती है ना? लड़के को स्कूल में क्यों भेजते हैं? किताबें तो मिलती है, किताबों की गाइडें भी मिलती हैं, ये आपका टेक्स्ट बुक और ये इसकी गाइड, और एक एक टेक्स्ट पर अनेक गाइड मिलेगी। हाँ, और वो गाइड लिखने वाला अच्छा अच्छा प्रोफेसर होता है, बढ़िया से बढ़िया डिग्री वाला, फिर भी स्कूल के टीचर के पास जाना पड़ता है, नहीं चले, ऐसे अभ्यास नहीं होता है, अपने आप नहीं होता है। वो तो मामूली बात है, ये जो लौकिक शिक्षण है वो मामूली बात है, उसमें कोई गहराई नहीं है उसमें, ये तो गहन विषय है बहुत, उसमें बिना गुरु कोई ज्ञान होवे ये बात कभी संभव नहीं है। हाँ, अनादि अनंत पारिणामिक भाव रूप, अनादि अनंत ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तीनों काल आत्मा का लक्षण ज्ञान है, जो अन्य द्रव्यों में नहीं है। जानने का कार्य पर्याय से है, जो जानने का कार्य है वो तो पर्याय द्वारा ही होता है, कार्य करने का डिवीजन पर्याय में है, निकाली में नहीं है, वो इनका ड्यूटी है। ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा जाननार वही आत्मा, ऐसे लक्षरूप आत्मा निशंक रूप से प्रसिद्ध होता है। ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा जानना जानने वाला वही आत्मा, ऐसे लक्षरूप आत्मा निशंक रूप से प्रसिद्ध होता है। वो अपना अनुभव से बात किया, बात तो बात है, वो तो प्रयोगात्मक बात है, और प्रयोग कैसे होता है वो बात थोड़ा समझने लायक है अपने। वो ये प्रकरण इस पर तो पूरा लिखा है निर्भान दर्शन में, उसके 56वें पाने गुजराती में वो बात लिखी है कि जो ज्ञान अपने स्वयं का अवलोकन करता है, अवलोकन करके अपने स्वयं का परिचय करता है, उनको अपने आप में ज्ञान की जाति समझ में आती है। मेरा ज्ञान अकषाय स्वरूप है और सतत रूप से प्रभावित होने से मेरे में अनंत ज्ञान का सामर्थ्य का भंडार भरा हुआ है, और अकषाय रूप होने से सुख स्वरूप है। अगर मेरा ज्ञान भी अनंत है तो मेरा सुख भी अनंत है। तो अपने सातत्य को वेदते हुए अनंत ज्ञान और अनंत सुख का निश्चय होता है, तो पूरी आधार बुद्धि और सुख बुद्धि का पलटा हो जाता है, दृष्टि उलट जाती है एकदम। हाँ, उपयोग होता है तो उपयोग वाली बात लब्ध में जाती है, में अनंत ज्ञान और अनंत सुख उपयोग में आया है, और उपयोग व्यतीत होकर लब्ध परिणति इसकी होगी। तो आत्मा की परिणति यहाँ से चालू होती है, यहाँ से परिणति चालू होती है। उस प्रकार से अवलोकन का प्रयोग चलना चाहिए। जब अवलोकन का प्रयोग सतत चलेगा तब ज्ञान का सातत्य अनुभव गोचर होगा, वेदन भी अनुभव गोचर होगा, और कषाय का अभाव स्वरूप होने से अनंत सुख स्वरूप है। मेरा अनंत सुख मेरे में है, मैं अनंत सुख का निदान हूँ, उसका विश्वास प्रगट लक्षण से आएगा। विश्वास कहाँ से आए, प्रगट लक्षण से आता है। कि लक्षण ऐसा प्रगट है तो अंदर में वस्तु ऐसी ही है, तब आधार बुद्धि और सुख बुद्धि पलटो पलटा मारती है। वो तो सिद्ध भगवान की पूजा है ना, सिद्ध भगवान की पूजा है, तो अनंत सिद्ध की पूजा। समूह तो समूह, अनंत सिद्धों का समूह जो प्रसिद्ध है। हाँ, और ऐसा ही मेरा आत्मा भी प्रसिद्ध है, मेरा आत्मा भी ऐसा प्रसिद्ध है, उसको सुसिद्ध कहते हैं। सुसिद्ध, मेरा आत्मा सुसिद्ध है, दूसरा सिद्धों से मेरा इतना प्रयोजन का कोई काम होता नहीं है। अवलंबन के योग्य तो अपना सिद्ध स्वरूप है। निशंक रूप से ऐसा प्रसिद्ध होता है, शंका नहीं होती, पूर्ण विश्वास होता है, मैं ऐसा सिद्ध स्वरूप ही हूँ, साक्षात सिद्ध स्वरूप हो, प्रत्यक्ष सिद्ध स्वरूप हो, अनंत प्रत्यक्षता, मेरे स्वरूप की अनंत प्रत्यक्षता मेरे प्रत्यक्ष ज्ञान में दिखाई दे रही है, तो उसका बल आएगा, जोर आएगा। तो ऐसा अंदर में प्रयोग चलना चाहिए, अवलोकन का प्रयोग बराबर चलना चाहिए। जब भी पहचान होती है, इसके सिवा पहचान होगी, ज्ञान स्वयं का अवलोकन करे, इसका अभ्यास सतत चले, तब भाव भाषण का मौका आता है। उतनी तैयारी बिना भाव भाषण सीधा नहीं आता है किसी को। तो ज्ञानी यदि किसी को भाव भाषण कराते हैं तो इसकी योग्यता उस प्रकार से देखते हैं कि क्या वो सतत अपने ज्ञान का अवलोकन में आया, क्या ऐसा अवलोकन कर सकता है क्या वो। अगर कर सकता है तो उसको अपना वेदन से अपना वेदन दिखा करके उनको इनका वेदन दिखा देते हैं कि देख मेरा वेदन, मैं ऐसा अपने वेदन में चलता हूँ, तुम भी ध्यान में अंदर से अंदर ध्यान से देखो, थोड़ा गौर से देखो, तुमको भी पता चल जाएगा पूरा का पूरा आत्मा का, ऐसा विज्ञान होता है। व्यवहार राग दया दान भक्ति द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है। ये आत्मा की प्रसिद्धि के लिए कोई साधन नहीं है, न व्यवहार साधन है, न राग साधन है, न दया दान साधन है, न भक्ति भी साधन नहीं है। एक ज्ञान लक्षण ही साधन है, दूसरा कोई लक्षण नहीं है, उसके द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती। क्योंकि रागादि त्रिकाली स्वरूप में रहते नहीं है, जबकि ज्ञान त्रिकाली स्वरूप में रहता है, रागादि त्रिकाली स्वरूप में नहीं है। वो तो अवस्था में रागादि तो जो है वो अवस्था में एक समय मात्र रह करके वो टल जाता है, उसका नाश हो जाता है। एक समय मात्र रागादि की आयु कितनी, एक समय की, फिर उसका नाश, उससे आत्मा की पहचान हो सकती नहीं है। इसलिए वह स्वलक्षण हो सकता नहीं है, राग है वो स्वलक्षण नहीं हो सकता। और अनंत धर्म में मुख्य ज्ञान है, अनंत धर्म में सब में शक्ति तो अनंत है, एक एक गुण है उसमें, अनंत शक्ति है, उसमें कोई में कम शक्ति है वो ऐसी बात नहीं है, कोई गुण में कम शक्ति ऐसी बात नहीं है, फिर भी ज्ञान मुख्य है, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रयोजन सत्ता है, इसलिए ज्ञान मुख्य है। अनंत धर्म में मुख्य ज्ञान है, पराश्रय बुद्धि छूट करके अंतर्मुख होने में ज्ञान ही कारण है, अंतर्मुख होने में ज्ञान ही कारण है, और बहिर्मुख होने में ज्ञान भी ज्ञान ही कारण था। कैसे कि आप ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से पर प्रकाशन के काल में स्वयं को चुक जाता है तो बहिर्मुख हो जाता है, स्वयं की पकड़ नहीं रही तो उपयोग बाहर गया, बाहर क्यों गया कि पर का प्रतिबिंब झेलता था इसलिए बाहर गया, ये है वो है ऐसा है ऐसा है। तो जो बाहर होने में कारण हुआ वही बाहर से उठने में कारण होगा, अंतर्मुख होने में कारण होगा। गांठ तो जहां पड़ी है वहां से खुलेगी, गांठ इधर पड़ी और खोले उधर, ऐसा बनता है। ऐसा बहिर्मुख यदि ज्ञान से हुआ तो अंतर्मुख भी ज्ञान से ही होगा। हाँ सीधी बात, पैर से चलता है तो उल्टी दिशा में भी पैर से चला और सुलटी दिशा में भी पैर से चला, सीधी बात। ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत गुरुदेव श्री ने प्रवचन करते हुए स्थापित किया है। दो सिद्धांत यहां से निकलता है, एक तीनों काल आत्मा का लक्षण ज्ञान है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। किसी काल में किसी जीव को अन्यथा झूठा प्रयत्न फालतू का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, वो व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ परिश्रम करने से आकुलता बढ़ेगी और कुछ होने वाला नहीं है। एक तो वो बात किया, दूसरी बात वो क्या कि पराश्रय बुद्धि छूट करके अंतर्मुख होने में ज्ञान ही कारण है, अंतर्मुख होना है, बिना अंतर्मुख हुए धर्म की उत्पत्ति शांति की उत्पत्ति होती नहीं है, ये बात तो समझ में आ सकती है। अब अंतर्मुख होने का कारण क्या है, अंतर्मुख होने में ज्ञान ही कारण है, और कहीं जगह इधर उधर शक्ति खर्चने की जरूरत नहीं है, अंतर्मुख होना है तो अपने ज्ञान वेदन को पकड़ो, ज्ञान विदन को आविर्भूत, जैसे कैसे भी ज्ञान विदन को आविर्भूत करो, तभी निर्णय होगा। वो 751 में लिया ना, दूसरा संकेत में क्या लिया, परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति, अनुभव को या वेदन को एक ही बात है, वेदन से ही प्रसिद्ध होता है। इसको 634 ज्ञान संयम आत्मा आश्रित है पराश्रित नहीं है, ऐसा मान करके ज्ञानी नित्य सहज ज्ञान के पुंज में स्वावलंबन से टिकते हैं, अपने अवलंबन निजावलंबन से टिकते हैं, दूसरा कोई टिकने का कारण नहीं है। ज्ञान न पुण्य मल, अनंत ज्ञान है ना, अनंत ज्ञान है, उसका अवलंबन लिया जाता है। मेरे में मेरा अनंत ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, उसमें से मेरा ज्ञान आता है, कोई और जगह से मेरा ज्ञान नहीं आता है। उसका अंतर अवलोकन चाहिए और अंतर खोज भी चाहिए। अंतर खोज बिना अवलोकन पूर्वक के, अंतर खोज बिना कोई सीधा ले ले कि मैं अनंत ज्ञान का भंडार हूं, तो विकल्प का कारण होएगा, अनुभव का कारण, भाववासन का कारण होने वाला नहीं है। और बिना भाववासन किसी को अनुभव आता नहीं। ज्ञान स्वयं का अवलोकन करें, मैंने स्वयं का अनुभव जो हो रहा है उन पर उपयोग को ले जाए, जो उपयोग बहिर्मुख हो रहा है उसको ज्ञान जो स्वयं वेदन रूप है, ज्ञान में स्वयं का अनुभव आ ही रहा है उस पर उपयोग को ले जाए। तो जो उपयोग उधर था उलट करके अंदर में मुड़ता है। प्रश्न पर प्रवेश भाव चालू है, भेद ज्ञान की जगह अभेद ज्ञान हो रहा है। अभेद ज्ञान में क्या हो रहा है कि पर प्रवेश भाव चालू है, ठंडी मुझे लगती है, गर्मी मुझे लगती है, मीठा मुझे लगता है, कड़वा मुझे लगता है, तो पर का प्रवेश होता है, वो पर वेदन उसको कहते हैं, वो अध्यासित पर वेदन है, वो अपना स्वसंवेदन को रोकने वाला भाव है, वो अनुभव प्रकाश में लिया है। पर प्रवेश भाव थी स्वसंवेदन रुका जाए, और स्वसंवेदन और अंतर्मुखता अभेद है। अंतर्मुख होवे और स्वसंवेदन नहीं होवे ऐसा बनता नहीं, स्वसंवेदन होवे और अंतर्मुख नहीं होवे ऐसा बनता नहीं। देखो मंदिर जी में भगवान विराजमान है, क्या विशेष बात है उसमें? परिपूर्ण अंतर्मुख है। परिपूर्ण अंतर्मुख होने का प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, यानी हमारा भी स्वभाव है। कैसा हमारा स्वभाव है? परिपूर्ण अंतर्मुख होने का हमारा स्वभाव है। अब वो हमको मालूम नहीं है, ऐसा स्वभाव हमको मालूम नहीं है, तो भगवान को देखते हैं तो परिपूर्ण अंतर्मुक्त, परिपूर्ण अंतर्मुक्ता को मूर्त रूप में देखते हैं। ये परिपूर्ण अंतर्मुक्ता की मूर्ति है, तो जिसको अंतर्मुक्ता दिखे उनको स्वसंवेदन भी दिखे, क्योंकि बिना स्वसंवेदन अंतर्मुक्ता होती नहीं है। स्वसंवेदन में क्या है कि वेद्य वेदक भाव से अंतर्मुक्ता है, वेदन करने वाला और वेदन में आने वाला दोनों एक ही है, स्वयं वेदन में आता है, स्वयं वेदन को करता है, इसलिए अंतर्मुक्ता हो जाती है स्वसंवेदन से। तो ये पराश्रयपना छुपने में ज्ञान ही साधन है, ज्ञान ही कारण है, या बुद्धि मैंने अभिप्राय लिया है।
अपना
બરાબર. વેદજ્ઞાનનો પ્રયોગ જુઓ કે તમે એસે કે વ્યાપાર મેં લાભ જ્યાદા હોતા હૈ, હમકો એસા લગતા થા કે ઇસ સાલ મેં હમ લાખ સવા લાખ ડેઢ લાખ તો કમા લેંગે, ઓર મિલ ગયા 5-10 લાખ રૂપિયા. કિતના ઉમ્મીદ થાય કે લાખ કે જગ્યાએ 1.5-1.5 લાખ કમા લેંગે, ઓર આ ગયા 5-10 લાખ રૂપિયા. હમકો ક્યા હોતા હૈ, હમકો પૈસા મિલા પૈસા મિલા પૈસા મિલા બહુત મિલા બહુત મિલા બહુત મિલા. હા, કહાં મિલા? આત્મા મેં એક પરમાણુ ભી આયા મિલા હી નહીં. આત્મા કે પર્યાય મેં મમતા મિલી, જો પૈસા મિલા ઉસકી મમતા મિલી, ઓર કુછ નહીં મિલા હૈ. પૈસા પૈસા કુછ નહીં મિલા. હા, ખરી વાત છે. ક્યાં કિયા? ખૂન કિયા આત્મા કા, સ્વયં કા ખૂન કિયા. રાજી રાજી થઈ જાય એમાં 5-10 લાખ મળે અને બીજે વર્ષે પાછા કરોડ મળે. હં, કાંઈ ન હોય, મહેનત કરી હોય લાખ વા લાખ માટે, એમાં 5-10 લાખ મળી જાય અને બીજા વર્ષે સીધા કરોડ મળે. જો હરખ 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 હરખ, હે, પરિણતિ થઈ જાય એને, એટલો બધો રસ પડે કે એની પરિણતિ થઈ જાય. ઊંઘ આવે નહીં પછી હરખે, તકલીફી થાય, ઊંઘ હરખે ન આવે પછી, બહુ હરખ વધી જાય ને એટલે ઊંઘ ન આવે પછી. પરાશ્રય બુદ્ધિ છૂટકર અંતર્મુખ હોને મેં જ્ઞાન હી કારણ હૈ. એટલે પરાશ્રય બુદ્ધિ મેં ક્યાં હોતા હૈ કે અન્ય પદાર્થ કા આધાર બુદ્ધિ હૈ. મેરે ઘર તો હૈ, મેરા મકાન તો હૈ, મેરે પાસ પૈસે તો હૈ, અપના કુટુંબ પરિવાર તો હૈ, કંઈ ભી તકલીફ પડેગી તો સબ કામ મેં આયેગા. વો પરાશ્રય બુદ્ધિ કો યા પર કે આધાર બુદ્ધિ હો, એક હી બાત હૈ, વો છૂટ જાતી હૈ. જબ સ્વરૂપ કા નિર્ણય ઓર પહેચાન હોતી હૈ તો મેં શાશ્વત જ્ઞાન ઓર સુખ સ્વરૂપ શાશ્વત હું, અવ્યાબાદ હું, ઉસકા આશ્રય આંશિક આશ્રય હોકર કે નિર્ણય હોતા હૈ. નિર્ણય એસા નહીં હોતા હૈ, વિકલ્પમાં નિર્ણય નહીં હોતા હૈ, જ્ઞાનમાં આશ્રય હોકર કે નિર્ણય હોતા હૈ. ગુરુદેવને તો લિખા હૈ 144 ગાથા કે પ્રવચનમાં, અંશતઃ રાગ કા અભાવ હોકર કે નિર્ણય હોતા હૈ, અંશે રાગનો અભાવ થઈને નિર્ણય થાય છે. રાગ કા અવલંબન છૂટ જતા હૈ, સ્વરૂપ કા અવલંબન વહાં સે સ્વરૂપ હોતા હૈ. પરાશ્રય બુદ્ધિ છૂટ કરકે અંતર્મુખ હો સકતે હૈ, સાઇમલ્ટેનિયસ હૈ. પરાશ્રયપણા છૂટે ઓર અંતર્મુખપણા હવે, યા પરાશ્રય રહેવે ઓર અંતર્મુખ હવે, વો તો બની નહીં સકતા. વો તો અંધેરા જાય ઓર પ્રકાશ આવે, બોલને મેં એસા આયેગા કે અંધેરા જાય ઓર પ્રકાશ આવે, ક્યુકે અંધેરા થા પહેલે, પહેલે પ્રકાશ નહીં થા, તો અંધેરા ગયા ઓર પ્રકાશ આયા. લેકિન અલગ અલગ કાલ મેં નહીં હોય, જીસ કાલ મેં અંધેરા ગયા ઉસ કાલ મેં પ્રકાશ આયા. એસે ભી બોલ સકતે કે પ્રકાશ કરતે હી અંધેરા ચલા જાયેગા. તો પહેલા કોણ કે પહેલા પીછે કોઈ હૈ નહીં, एक साथ दोनों है। क्या विषय चलता था अपने को? ज्ञान वेदन वाला विषय चलता था। ज्ञान में जो ज्ञान वेदन है वो आविर्भूत हुए तो अंतर्मुखपना तो स्वभाव है, सीखना नहीं पड़ता हो जाता है, करना नहीं पड़ता लेकिन हो जाता है। अंतर्मुखपना भाव भाषण में हो ही जाता है, क्योंकि विद्य वेदक भाव से लक्ष्य पकड़ने में आया। और जैसा सिद्ध समान सिद्ध स्वरूपी अपना लक्ष्य का ग्रहण हुआ कि लक्षण गौण हो ही जाएगा, वेदन गौण हो जाएगा, वेदन मुख्य नहीं रहेगा। अनुभव में वेदन मुख्य है और लक्ष्य में त्रिकाली मुख्य है, वेदन गौण है। अनुभव में वेदन मुख्य है और त्रिकाली गौण है, और लक्ष्य में त्रिकाली मुख्य है और वेदन गौण है। ऐसी बात उल्टी सुलटी है और दोनों एक साथ है, और दोनों एक साथ है। ऐसा अनेकांत है, अनेकांत तो ऐसा अनेकांत है। ये बात लिया है 514 नंबर के बोल में और 544 नंबर के बोल में, वो बात लिया है। देखो पांच में तो कंपेरेटिव बात ली है, 544 ले लो पहले। बात तो दोनों में एक सी क्या है। समय सार की गाथा 11 में पर्याय को गौण करके ए भूतार्थ कही थी, वहां तो पर्याय का आश्रय छुड़ाने के हेतु से पर्याय को गौण करी, गौण कहकर के अभूतार्थ कही थी, परंतु पर्याय सर्वथा नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि अभूत का अर्थ होता नहीं होना। अभूत का अर्थ क्या होता है? भूत मैंने होना, अभूत मैंने नहीं होना। अब यहां गाथा 15 में तो ये 15 गाथा पर प्रवचन चल रहा है, यहां 15 गाथा में तो जिसमें अबद्ध स्वरूप आत्मा अनुभव में आया, जिस पर्याय में, जिस ज्ञान के पर्याय में, श्रुत ज्ञान के पर्याय में अबद्ध स्वरूप आत्मा अनुभव में आया, वह पर्याय मुख्य ही है। देखो पर्याय मुख्य है ऐसा कहते हैं। वह पर्याय जैन शासन है। क्या है?
जैन शासन।
कितना जैन शासन? समस्त जीन शासन है। भगवान समस्त जीन शासन कैसे कहते हो? वहां तो साधक पर्याय है, आंशिक आंशिक अनुभव है, वहां तो पूरा तो अनुभव नहीं है। फिर भी समस्त जीन शासन कहे कहा कि हाँ वो अनुभव है, वो समस्त जीन शासन है। हाँ साध हुआ तो सिद्ध हुआ। बात है, साधु हुआ तो सिद्ध हुआ, साधु बना तो सिद्ध हो गया। बात तो ऐसी है, साधुपने में सिद्धपद का दर्शन करते हैं, उसको मोक्ष तत्व कहा है। प्रवचन सार के अंतिम पंचरत्न गाथा में अमरचंद्र आचार्य ने मोक्ष तत्व कहा है, और कुनकुन आचार्य ने कहा है। वो पंच गाथा तो कुनकुन आचार्य के है ना, मोक्ष तत्व कहा है, साधु को मोक्ष तत्व कहा, समन निद्रा तत्व नहीं कहा। इस यहाँ अध्यात्म है, आगम की अपेक्षा से तो वो समन निद्रा तत्व है, और जिनेन्द्र भगवान है वो मोक्ष तत्व है, 13वें स्थान वाले अरियंत है वो मोक्ष तत्व है, आचार्य उपाध्याय साधु निर्जरा तत्व है, समन निद्रा तत्व है, वो आगम की अपेक्षा। अध्यात्म की अपेक्षा तो साधु हुआ तो सिद्ध हुआ, चलते चलते फिरते सिद्ध। साधु को चलते फिरते सिद्ध कहा, क्योंकि उसमें ऐसा दर्शन करने में, परमात्मा का दर्शन करने में आता है, गुरु में परमात्मा दिखने में आता है। शांत दिगंबर मुद्रा जिनकी, मंदिर तुल्य अचल है, पर्वत जैसा मंदिर, मैंने पर्वत, वो मंदिर नहीं, मंदिर नहीं लेना वहां, मंदिर मैंने पर्वत जैसा मंदिर अचल होता है, ऐसा मुनिराज भी, दिगंबर मुनिराज अचल होता है, उसको चलित नहीं देखते, उसको अचल देखते हैं। हाँ, मूर्तिमान मोक्ष स्वरूप है, सत्पुरुष में मूर्तिमान मोक्ष स्वरूप है, मुनि तो होवे ही होए, सवाल ही पैदा नहीं हो। ठरेला था ना बेन, ठरेला बोलता, मन वचन काया ना योग, एकदम शांत ने ठरेला था, चंचलता नती। सामान्य रीते स्त्री पर्याय चंचल स्वभाव वालो छे, पण ए प्रकारनो विभाव ज्ञान दशामां चाल्यो गयो, एकदम निश्चल दिखाय। कहते कि जिसको अनुभव हुआ जीन शासनम सबम, 15 गाथा बोलती, वो समस्त जीन शासन है। हाँ, मेरा जो द्रव्य विकार बिना का वितरागी तत्व है, उसका मैं लक्ष्य करता हूँ, वो लक्ष्य का विषय है। वहां तो पर्याय में वितरागता आ जाती है, वितरागी द्रव्य है मेरा स्वरूप, वितरागी द्रव्य है ऐसा जहाँ लक्ष्य में आता है तो पर्याय में वितरागता पैदा हो जाती है। यो वेदन की पर्याय मुख्य ही है, देखो ये वेदन की पर्याय मुख्य ही है, ये बात प्रवचन सार के 172 गाथा के 20वें बोल में भी गुरुदेव लेते थे कि पर्याय ही मुख्य है। द्रव्य वेदन में नहीं आता, क्या कहते हैं, द्रव्य वेदन में नहीं आता, वो बात बहुत विद्वानों को नहीं बैठती है। द्रव्य का वेदन नहीं होता है, हमारा द्रव्य का हमको वेदन नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव कहते थे कि द्रव्य का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है, यही गुरुदेव कहते कि द्रव्य वेदन में आता नहीं है। सत्संग बिना बात समझ में नहीं आए, गुरुदेव कहे कि आत्मा का अनुभव होता है, गुरुदेव कहता है कि द्रव्य वेदन में नहीं आता है, अब क्या करोगे। जब दोनों बात परस्पर विरुद्ध दिखती है, फिर है नहीं, है नहीं और वचन में ऐसा दिखता है, तो उसका निवेड़ा कौन लावे, तो उसको सत्संग के बिना उसकी सही समझ नहीं आएगी। ऐसी बहुत सी बातें गुरुदेव से निकली है, लगे परस्पर विरुद्ध लेकिन परस्पर विरुद्ध है ही नहीं। हाँ, पर्याय में ही वेदन होने का पर्याय में समाप्त हो जाता है, पर्याय बाहर किसी को वेदन है ही नहीं, क्योंकि वेदन तो कार्य है और कार्य का डिवीजन पर्याय की सीमा में है, द्रव्य में वो डिवीजन नहीं, उसका डिवीजन अलग है। लेकिन अवलंबन लेती है पर्याय द्रव्य का, अहम भाव करती है, ऐक्य भाव करती है भाव से, तो बोलने में आता है कि द्रव्य का अनुभव हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, ऐसा बोलने में आता है। वास्तव में वेदन पर्याय का ही होता है, निगोद से लेकर सिद्ध तक सभी आत्माओं का, आत्मा को पर्याय का ही वेदन होता है। द्रव्य में वेदन आता नहीं, पर्याय वेदन में आती है, ये वेदन के पर्याय मुझे मुख्य है, क्या करते हैं थे? देखो, वेदन के पर्याय मुझे वेदन अपेक्षा से, किस अपेक्षा से, लक्ष्य अपेक्षा से नहीं, उसे तो गौण कर डाले वो नहीं चलेगा नाथ, क्या बोलते हैं देखो, क्या शैली है गुरुदेव की, नाथ बोलते हैं। तो इसको वेदन में, वेदन में वेदन को गौण करे वो नहीं चलेगा तेरा। हम कहते हैं कभी कभी कि वो बात दूसरी है, ये बात दूसरी है। पूर्णानंद का नाथ जहां जानने में आया और अनुभव में आया, वो उसे गौण नहीं, वो गौण नहीं हो गया। हाँ, वो गौण नहीं हो सकता। ये तो तुझे द्रव का लक्ष्य और आश्रय कराने के कारण से पर्याय को गौण किया था, परंतु वेदन तो, वेदन तो पर्याय में मुख्य है। हाँ, वेदन तो पर्याय में ही मुख्य है। वो लक्ष्य की बात में वो उसको भले ही गौण किया है, लेकिन वेदन में तो पर्याय मुख्य है। भले द्रव्य का आश्रय कराने के लिए परिणाम को गौण किया, परंतु वो परिणाम कहाँ चले जाए, ये परिणाम अस्थि रूप वेदन में है वो कहाँ जाए, अस्थि रूप वेदन में है कहाँ जाए। हाँ, ये तो आत्मा पुकार करता है। क्या आत्मा, आत्मा का पुकार है कि विद्राग स्वरूप जो मेरा द्रव है उसका लक्ष्य करते ही मुझे वितरागता वेदन में आती है और वो वेदन मुझे मुख्य है। बहुत स्पष्ट किया है, वही बात 514 में भी लिया है और 544 में, दोनों में लिया है। दोनों बात को अपने अपने स्थान में यथा स्थान रूप जानने चाहिए। मृत बोल बोलता हूँ 544 ज्ञान गोष्ठी में। वेदन मुख्य है, अगर वो बात समझ में नहीं आए तो ग्रीत मिथ्यात्म में भी चला जा सकता है, क्योंकि वेदन तो पर्याय में ही होता है, त्रिकाल में वेदन होता नहीं है। तो बहुतों को वो बात समझ में नहीं आती है, द्रव्य में वेदन नहीं होता है, नहीं होता है भाई, पर्याय में ही वेदन होता है। वेदन अपेक्षा से वो मुख्य है, क्या अनुभव करने के हिसाब से इसकी मुख्यता है। अगर अनुभव को मुख्य करे तो वेदन, वेदन ही मुख्य है उसमें। लक्ष्य के हिसाब से भले त्रिकाली मुख्य हो, वेदन के अपेक्षा से वेदन को गौण नहीं किया जाता। वेदन में आता नहीं है ऐसा कहो, या द्रव्य का अनुभव होता है नहीं ऐसा कहो, एक ही बात है, शब्द फेर है। त्रिकाली नाथ की सत्ता का स्वीकार किया वितराग भाव से हुआ, यह भाव कहीं चला जाता नहीं। अनुभव तो अनुभव के वेदन में ही रहता है। परिणाम को गौण कहा वो तो लक्ष्य की अपेक्षा से गौण कहा, अनुभव की अपेक्षा से गौण नहीं कहा। अनुभव की अपेक्षा से यही मुख्य है, क्योंकि द्रव्य का अनुभव होता नहीं। ये द्रव्य का अनुभव नहीं होता है वो बताने की बात है। मेरा वितरागी तत्व है, उसको, उसका जहाँ मैं लक्ष्य करता हूँ वहाँ तो वितरा की दिशा प्रकट हो जाती है और यही मुझे मुख्य है। वेदन में आए यही मैं, मुझे मुख्य है। लक्ष्य की अपेक्षा भले ही गौण किया, परंतु जो यह वेदन में है उसको गौण करता है वो नहीं चलेगा। पूर्णानंद का नाथ, का नाथ को जाना और वेदन में आया, वो वेदन को तो गौण नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ, यह तो लक्ष्य कराने की अपेक्षा से तुझे कहा है, परंतु मुख्य तो यही है जो आनंद अपने को प्रत्यक्ष वेदन, वेदा वेदन में आए, यही मुख्य है। क्या मतलब है देखो उसमें, देखिए एक आदमी के पास, एक और दृष्टांत ले ले, बहुत धन है। कितना धन है? बहुत, डोम डोम साहिबी है, बहुत धन है, सब भंडार भरे हैं सब। हाँ, वो क्या खाता है? सब खा जाता है, भंडार भरा है वो खा जाता है क्या? हाँ, जितनी संपत्ति उसको भोग लेता है क्या? नहीं। तो उसकी संपत्ति कितनी के जितनी भोगी उतनी बाकी पड़ी रही जा। एक आदमी के पास पैसे बहुत है, संपत्ति बहुत है, लेकिन उसकी संपत्ति कितनी के जितनी उसने भोगी उतनी, बाकी संपत्ति उसकी है कहाँ? वो तो पड़ी रही। ऐसे द्रव्य तो पड़ा रहता है, अनुभव में वेदन आता है। उसके हूफ पड़ती है, लक्ष्य उसका रहता है, लेकिन भोग नहीं सकता सबको। ऐसे पूरा द्रव्य को कोई भोग, द्रव्य को भोग नहीं सकता। वेदन तो पर्याय का होता है, वही वही आत्मा है। त्रिकाली से नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय वही आत्मा है। विषमा गोल में लिया कि नहीं लिया? शुद्ध पर्याय को आत्मा कहा। हाँ, अनुच्छ जितलू सुख है वो एटलू काम न खाधु एटलू आपनो, बाकी तो भंडार भर्यो छे मीठा मिष्ठान नो, ખાધુ એટલું આપણું, બાકી પીડ્યું રહ્યું શું કામનું? જે પીડ્યું રહ્યું એ શું કામનું? કયો નકામું પીડ્યું રહ્યું એ કામનું નહીં, એનો અર્થ કે નકામું ખાધું એટલું આપણું અનુભવમાં આવ્યા ઉતના વેદન અપના ઉસ અપેક્ષા સે ઉસકી મુખ્યતા હૈ એસે બાત। तो यहां भी कहते हैं कि पराश्रय बुद्धि यानी आधार बुद्धि छूटने में ज्ञान ही कारण है। अंतर्मुख होकर के वो पराश्रय बुद्धि छूटती है, इसलिए ज्ञान ही कारण है। अंतर में अपना स्वरूप अवलंबन लेने योग्य, आश्रय लेने योग्य है, ऐसा वहां पता चल जाता है। पता चल जाता है तो पहुंच हो जाती है, बिना पता लोग पहुंच होती नहीं है। और विशेष नहीं है।